نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آيت نمبر 60 سے 62 اس کی تفسیر دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب پانی طلب کیا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پھر کیا ہوا فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ پھر ہم نے کہا کہ مارو اپنے عصا کو پتھر پر مار دیا ہوگا یہاں ذکر نہیں ہے یہ دیکھیے سبمیشن بندگی عاجزی کہ انبیاء کرام کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ کام نہ کریں وہ تو فوراً ہی اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں نتیجہ بتا دیا اس حکم پر عمل کرنے کا نتیجہ فن فجرت من حسنتا عشرت عینہ پس پھوٹ نکلے اس میں سے 12 چشمے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں بالکل دیر نہ کی اور نتیجہ نکالنے میں اللہ نے دیر نہ کی کیا ہوا اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے پھر کیا ہوا یہ سب کیوں ہو رہا تھا یہ جو بیچ میں چھوٹا سا ایک سوال میں دیتی ہوں نا اگر یہ سوال آپ ترجمے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ادھر ادھر لکھ لینا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کو تفسیری ترجمہ کہتے ہیں اصل ترجمے کے بیچ میں کچھ لفظ اس طرح کے لگا لینے کہ جس سے بات اور کھل کر سامنے آ جائے اس کو تفسیری ترجمہ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے لفظی ترجمہ یہ بنیادی چیز ہے پھر ایک اس کے بعد ہوتا ہے بامحاورہ ترجمہ یہ سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے یہ جملے لکھ لیں انشاءاللہ آپ کو اس سے بھی فائدہ ہوگا آگے جا کے سب سے پہلے لفظی ترجمہ پھر بامحاورہ ترجمہ پھر اس کے بعد تفسیری ترجمہ اور اس کے بعد پھر تفسیر یہ چار چیزیں اگر ایک آیت کے ساتھ آپ کر گئے اللہ کے حکم سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے قرآن کی تفسیر کو سمجھنا بہت آسان ہوگا تو یہ جو بیچ میں میرے چھوٹے چھوٹے سوال یا اس آیت کو جوڑنے میں دوسری بات سے یہ چیزیں اگر آپ نوٹ کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا ہوا کیا 12 چشمے پھوٹے اس کے بعد اس سے مطلوب کیا تھا قد علم کل اناس مشربہم تحقیق جان لیا ہر انسان نے یا ہر گروہ نے مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو پھر کیا کہا گیا کیا یہ چشمے پھوٹ کر پانی نکال کر ان کو منع کر دیا نہیں کہا کلو و شربو کھاؤ اور پیو مر رزق اللہ اللہ کے رزق میں سے ہاں بس منع کیا ہے ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور نہ تم زمین میں پھرو مفسد بن کر فسادی بن کر اگر آپ دیکھیں تو اس آیت کو سننے سے ہی لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ بات تھی تو ہم پیچھے بنی اسرائیل کے قصے پڑھ رہے ہیں اس وقت ہم بنی اسرائیل کی تاریخ کے اس دور سے گزر رہے ہیں جب وہ وادی تیہ میں تھے فرعون کے ڈوبنے کے بعد کا وقت ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو اب تورات ملنی ہے اس کے بیچ کا یہ دور چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے پیچھے بنی اسرائیل کے انعامات کا جو ذکر کیا تھا اس میں سے یہ آٹھواں انعام ہے انی فضلتکم علی العالمین کہہ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بات کہی تھی یہ اس کی تفسیر ہے کہ ہم نے تم کو کیسے فضیلت دی آٹھویں چیز یہ ہے پیچھے اگر آپ گنیں گے بادلوں کا سایہ من و سلوہ کا ہونا اور فرعون کا ڈوبنا اور اس طرح کی ساری چیزوں سے ہوتے ہوئے اب صحراؤں میں جہاں پانی کے نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس قوم کو وہاں پیاس کی وجہ سے مار دیتے لیکن مارنا مطلوب نہیں تھا اگر مارنا ہی مطلوب ہوتا تو اللہ سمندر میں ڈبو دیتے اس قوم کو بھی اللہ تعالیٰ ان سے ایک بڑا کام لینا چاہتے تھے یہ جملہ نوٹ کریں یہ بنی اسرائیل کی سزا سے زیادہ تربیت تھی بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی تربیت اور اس کی سزا کا فرق نہیں جانتی اللہ تعالیٰ قوموں کو بعض دفعہ سزا دیتا ہے بعض دفعہ نیست و نابود کرتا ہے جس کو عذاب استحصال کہتے ہیں سورۃ الاعراف میں اور انعام میں اس کی مثالیں ہم پڑھیں گے جڑ سے اکھاڑ دینا یعنی ایک قوم ایسی مٹے کہ اس کا نام بھی نہ باقی رہے یہاں بات کیا ہو رہی ہے تربیت کی انہوں نے جہاد کا انکار کیا تھا गुलामी में उनकी मत मारी गई थी आप कह लीजिए, तो अल्लाह ताला ने रखा। और इस पूरे सबक में आप देख रहे हैं इस का लफ्ज बहुत है, उस करो, याद करो, तुम उस वक्त को याद करो जब ये हुआ। अब आप देखिए कि ये अल्लाह ताला का एक क्रिएशन प्लान भी है। जब कुछ कौमें अल्लाह ताला की तरफ से मौजजा देख लेती हैं और उसके बाद तो दिल जम जाना चाहिए पत्थर पे लकीर की तरह। पिछले मौके पे भी अल्लाह ने मुझे बचाया था, अगले पे भी बचाएगा। देखिए हम यकीन कहते हैं किताबों में लिखी हुई चीज़ को, हाँ वो लिखा हुआ आमंतु बिल्लाही व कुतुबिही व रुसुलिही। नहीं, मैं बनी इसराइल के इस हालात पे नज़र रखते हुए आपको थोड़ा सा ईमान का डिस्क्रिप्शन इस वक्त समझाऊँ कि असल ईमान क्या है। बनी इसराइल देख चुके हैं फिरौन खुदा बना हुआ था, नीज बिल्कुल नामुमकिन था कि कभी इससे जान छुटेगी। अल्लाह ने जान छुड़ा दी। जब अल्लाह ने उससे जान छुड़ा दी तो बनी इसराइल का यकीन हो जाना चाहिए ना कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर, पहली बात। दूसरा इनका यकीन क्या होना चाहिए कि जब भी हम पे कोई मुश्किल पड़ेगी अल्लाह हमें बचाएगा। जब इस कौम को इस यकीन में पुख्तगी मिलती तो फिर उनके लिए कौम एमालका यानी एमालका नामी कौम से लड़ना भला क्या बड़ी बात थी। देखिए मैं आपको एक फिर छोटी सी मिसाल देती हूँ, मेरा दिल करता है छोटे से छोटा करके बात को करूँ तो बात समझ आएगी। अब देखिए बच्ची है एक छोटी सी, 5-6 साल की है और माँ है किचन में, तो माँ कहती है बेटी को मेरे साथ काम करो, जहाँ कोई काम तुम नहीं कर सकोगी ना तो मैं हूं ना तुम्हारे पीछे। तो असल तो करती माँ ही काम है, सिर्फ वो बच्ची की तो ट्रेनिंग कर रही होती है। ठीक है, अकलमंद माएँ ऐसा करती थी और आजकल भी जो कर रही हैं माशाल्लाह वो बहुत अकलमंद हैं। बच्चियों को वक्त से पहले इन चीज़ों के लिए लाना चाहिए था। अब हुआ क्या कि वो बच्ची छोटा सा काम तो एक्सेप्ट कर ले कि मेरे तो हाथ ही बड़े छोटे हैं तो मैं तो यही करूँगी, लेकिन एक दूसरी बच्ची है वो क्या कहेगी, देखो करना तो माँ ने ही है ना, तो मैं बड़ा काम भी करने की नीयत कर लेती हूँ। अब ये सिर्फ एक मिसाल थी, अल्लाह के लिए ऐसी भी मिसाल कोई इतनी खूबसूरत नहीं है। मेरे काम करने अल्लाह ने है, ए मालिक करना तो तूने है तो मैं बड़े काम की नीयत क्यों ना कर लूं। ये राज इतना बड़ा राज है कि जिसने लोगों को पत्थरों के अंदर से रास्ते बनाने में, दोनीम इन की ठोकर से सहराओ दरिया, पहाड़ों में रास्ते बना दिए। जो हमने पीछे वाक्या पढ़ा है ना कि मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दरिया में रास्ते बने, समंदर फटा ना, हमारा ईमान है इस बात पे। और आपको मैंने इशारा भी दिया कि तारीख में ऐसा मुमकिन है, आपको तक कि इस्लामी तारीख में भी ऐसा हो चुका है। अब मैं नामों में नहीं उलझाती क्योंकि उससे फिर वो जो मॉरल होता है ना वो पीछे चला जाता है, हम नामों में उलझते हैं। बस कहले एक मुसलमान कमांडर थे और बिल्कुल यही सिचुएशन उनके साथ हो गई थी कि जब वो मुसलमान फौजों को लेकर निकले, आगे दरिया आ गया, पीछे दुश्मन की फौज, आगे दरिया, क्या करें, किन पे बैठे हुए हैं, घोड़ों पे, घोड़ा कहाँ चलता है, खुश्की पे। वहां दरिया के किनारे खड़े होके कहते हैं मालिक इस खुश्की पे भी तू नहीं घोड़े को चलना सिखाया, इस पानी में भी इसको तू चला दे, मैं पीछे नहीं जाऊं, क्योंकि पीछे जाने का मतलब पसपाई थी, गिव अप करना, हार मान लेना। तारीख गवाह है आज भी कि वो दश्त तो दश्त है सहरा भी ना छोड़े, हमने बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वहां घोड़े पानी में तैरने लग गए, यानी अल्लाह ने उनको आबी घोड़े बना दिया। उधर से दुश्मन ने देखा कि ये तो पानी में तैरते हुए आ रहे हैं, तो वो आदमखोर कहकर भाग गए, खौफ तारी हो गया। मेरा ईमान है कि मेरा रब मेरे घोड़े को मेरी गाड़ी को दरिया में भी चला सकता है, तो वल्लाह ही गाड़ी का बाल कभी का नहीं होगा, आपकी गाड़ी दरियाओं से निकल जाएगी। ये ईमान का इम्तिहान था। अल्लाह ताला ने इनको ये सारा कुछ अभी जो सिखाया जा रहा है ना इस वक्त, ये असल में इनके अकीदे को पुख्ता करने के लिए है। इनका ईमान का ये बड़ा सख्त इम्तिहान है, ये कर क्या रहे थे, इनको करना क्या था, अल्लाह ने इतनी बड़ी निशानियां दिखाई फिर भी ये शक में पड़े हुए हैं कि हम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, तो लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। अब आप देखिए कि बिगड़े हुए गुलाम तो थे ही, नवाबों के गुलाम थोड़े बिगड़ ही जाते हैं, सहरा में वो ऐश कोश तो मिला ना, पीछे जिक्र शुरू हो चुका है पिछले सबक में कि मनोसलवा अल्लाह ने दिया, लेकिन अब पानी नहीं था, तो आके मूसा से कहने लगे ए मूसा जरा हमारे लिए पानी तो मांग दो। तो भी तुम्हें मांगते हुए क्या, अल्लाह से ताल्लुक टूटा होता है ना तो फिर एक इंसान अल्लाह के सामने खड़ा नहीं होता, वो कहता है मौलवी साहब आप मांगे, वो मेरी नहीं सुनता, नाउज़ु बिल्लाह, मेरे साथ वो जरा नाराज नाराज है, आप कीजिए मेरे लिए दुआ। ये किसी कौम के जवाल की अलामत होती है कि वो कौम दुआ भी खुद ना मांगे और उनकी दुआएं भी मौलवियों और दीनदारों से हों। खैर, मूसा अलैहिस्सलाम ने किया कि वह इज इस्तस्का, और जब पानी तलब किया मूसा ने। इस्तस्का के लफ्ज को देखिए, किसी भी चीज की तलब पानी की सूरत में। अच्छा, इसे मिलता हुआ लफ्ज बोलिए जरा उर्दू में। सलातुल इस्तस्का, पानी मांगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश मांगने के लिए जो नमाज पढ़ते थे उसको सलातुल इस्तस्का कहते थे। तो गोया के यहाँ इस्तस्का का लफ्ज आ गया पानी तलब करना। मूसा मूसा ने ली कौम ही, देखिए जो ली है ना, ये बहुत अहम है। दो बातें हैं, जब तलब किया मूसा ने पानी अपनी कौम के लिए या अपनी कौम से। अब जरा सा जिन लोगों को मजा आता है इस आयत के ऊपर नजर डालने में वो डाले। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि आपने ये तर्जमा क्यों किया कि जब मूसा ने पानी तलब किया अपनी कौम के लिए? क्यों मैं इसका तर्जमा ये नहीं कर देती कि जब मूसा ने पानी तलब किया अपनी कौम से? कितनों को सवाल समझ आ गया है? कौम से तलब किया होता तो यहां क्या होता? जी मिन, शाबाश। वह इज इस तस्का कौम मूसा मिन कौमी ही, तो मिन फ्रॉम ली वास्ते। तो ये ली क्या हो गया? फॉर के मानों में, कि मूसा ने पानी तलब किया ली कौमी ही, अपनी कौम के लिए। अब मैं आपसे कहती कौमी ही क्यों आया? फिर खेलें, आपको सारे गम अपनी बीमारियां भूल जानी चाहिए कि ये तो इतने गम पड़े हैं जो हमने अभी तक कुरान में नहीं सीखे। मैं कहती ये जुमला ऐसे क्यों नहीं आप बोल रहे कि ली कौमा हूँ? अब इसका जवाब आप में से कोई पढ़ा लिखा दे, ली कौमा हूँ क्यों नहीं आ गया? यहां से गलतियां पकड़ी जाती हैं। हाफिज बेचारों ने एक रट्टा होता है, उनको समझ नहीं आता, लेकिन जो लोग ग्रामर जानते हैं वो कहते हैं ये ली कौमा हूँ आ ही नहीं सकता। अब एक हाफिज़े कुरान है, वज़िस्तस्का मूसा ली कौमा हूँ फकुल, उसको पता ही नहीं गरीब को, क्योंकि उसने तो साउंड से याद किया और जुबान पे एक दफा लफ्ज चढ़ गया तो वो तो पलटता नहीं है। तो ली कौमा हूँ क्यों नहीं आया? ली हरफे जर है, जैसे बा हरफे जर है। बिस्मिल्ला, कभी आपने बिस्मल्ला नहीं पढ़ा होगा? बस मल्ला पढ़ेंगे आप आगे कहीं जाके जब आपको तजवीद टीचर सिखाती हैं एडवांस तजवीद। लेकिन बा के बाद भी इसम लफ्ज पे जेर आई तो कौमी ही, ली कौमी ही वास्ते अपनी कौम के। कौम का लफ्ज किसके लिए आता है? गिरोह, नेशन, पीपल, कुछ भी इसका मानी आप रख लीजिए। फकुल ना, तो हमने कहा। कैसे कहा? अब यहां क्वेश्चन लिखिए। अल्लाह सुबहाना तआला ने बोला है कि हमने कहा। पहला क्वेश्चन इसके अंदर क्या है? हम क्यों बोला अल्लाह तआला ने? इसका अंदर अल्लाह तआला नऊज़ बिल्लाह जम है, फिर एक नहीं तो दो तो होंगे या चार तो होंगे, तीन भी हो सकते हैं। नहीं, बहुत सारे नॉन मुस्लिम मुसलमानों को आर दिलाते हैं कि तुम्हारे अल्लाह के बारे में कुरान में जमा क्यों आती है। तो इसका जवाब इब्ने तैमिया रहमहुल्ला ने दिया। एक जवाब क्या कहते हैं कि जब भी कुरान में लफ्ज हम आए अल्लाह के लिए, तो मतलब अल्लाह तआला ने ये काम फरिश्तों के जरिए करवाया। अपनी समझ के ले लीजिए कि फरिश्ते अल्लाह तआला की फोर्स हैं। जैसे हम अपने काम अपनी टीम से करवाते हैं, हम अपने बच्चों से करवाते हैं, हम अपने हेल्पर से करवाते हैं ना, तो अल्लाह ताला को किसी की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें सिखाया कि काम कराने का तरीका क्या है, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों से ये काम ले लिया। तो एक वजह ये है। और दूसरी वजह जो इससे भी ज्यादा दिल को लगती है कि यहाँ हम इजाफत बराए तशरीफ, शर्फ। बड़े बादशाह अपने आप को क्या कहते हैं? इज्जत माप, हम आते हैं, हम खाते हैं। अरबी जुबान में हम हमेशा जमा का नहीं होता, इज्जत का भी होता है। बात समझ गए? ये बात है। तो ली कौमी फकुलना, और ये कैसे कहा होगा अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम को? इसके बारे में कुरान हदीस में कुछ नहीं पता। या तो बराह रास्त वही की होगी क्योंकि कल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा, या फिर फरिश्ते के जरिए वही किया होगा। ये दोनों मानी आप लिखेंगे। यानी सवाल क्या बना दिया आपके लिए कि यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह का कलाम कैसे है? तो दो मुमकिना सूरतें हैं। नंबर एक क्या है कि मूसा अलैहिस्सलाम को डायरेक्ट अल्लाह ताला ने बता दिया। ये बात दिल को नहीं लगती क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने जहां भी कलाम किया है उसके पीछे भी बहुत प्रोटोकॉल होता था। जैसे कोहे तूर पे पुकारा था इन्नी अना अल्लाह। दूसरा इसका मानी ये कि फरिश्ते के जरिए बता दिया होगा। दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक हैं। चलिए आगे देखिएगा। इद्रिब मारो, फकुल नद्रिब मारो। दरबा का लफ्ज अरबी जुबान में तीन मानों में आप पढ़ेंगे कुरान में। लफ्जी मानी होता है मारना, दर्ब, जरब जैसे कहते हैं ना, जरब मारना, ये मानी भी कुरान में आता है, और इसका असल मानी ये टू हिट जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन चलने के लिए भी आता है। चलना क्यों? जब आप चलते हैं तो क्या करते हैं, पांव जमीन पे मारते हैं ना। इसी तरह तीसरा मानी है बयान करना, टू रिसाइट या टू टेल स्टोरी टेलिंग, वर्ड, और ये तो बहुत है कुरान में, दरब अल्लाह मसलन कलीमतन तय्यिबतन। तो वो क्या, जब लफ्ज सब मैं बोल रही हूँ तो मेरे लफ्ज कहाँ जा रहे हैं, आपके कानों के पर्दे पे टिक टिक कर रहे हैं। तो दरबा के तीन मानी, टू हिट मारना, किल नहीं है याद रखिएगा, टू हिट जैसे मैंने अब इसको हिट किया तो मैंने मारा तो नहीं है ना इसको, यानी इसको कत्ल तो नहीं कर दिया ना, और दूसरा चलना और तीसरा बयान करना। यहां मुराद कौन सा है? पहला मानी, रियली मारना। इसी को अल्लामा इकबाल ने ज़र्बे कलीम कहा है, कहते हैं ना कि आज मूसा का हाथ ही नहीं है तो असा भी आ गया तो फायदा नहीं देगा, लेकिन खैर कहा, मारो भी असा का, अपने असा को। यहां असा का लफ्ज दोबारा आ गया, पीछे भी आपने इसके बारे में देखा। आप देखिए पहले तो इसका रूट नोट कीजिएगा क्योंकि ये बहुत अहम बात है। दो रूट्स हैं, ऐन स्वाद या, क्या इसका ये रूट होगा? नहीं, वो रूट किसका होता है? असियान, नाफरमानी, वो भी आ रहा है आज के सबक में आगे, इसियान, नाफरमानी। यहां जो लफ्ज है ना असा, जिसको आप और मैं असा बोलते हैं स्टिक के मानों में, ये क्या है? आइन स्वाद वाओ, शाबाश। अब आप देखिए कितना हमारी फर्क है, और मजे की बात देखिए कि दोनों लफ्ज हरफ इल्लत ही हैं और जो एक दूसरे में चेंज भी हो जाते हैं। तो यहां आइन स्वाद वाओ या आइन स्वाद हमजा, ठीक है, दोनों का मानी, और मानी कितना फर्क है, एक के साथ आया तो मुराद क्या हो गया असा से? ज्यादती करना। और यहां दूसरी तरफ देखिए असा की अहमियत भी थोड़ी सी पता चलती है। देखिए बड़े गौर से ये जुमला सुनिएगा, इसी असा के टकराने से पीछे पानी पत्थर बन रहा है जब दरिया के ऊपर आकर मारा, और अब इसी असा के पत्थर पे गिरने से पानी निकल रहा है। तो असल चीज असा ना था, असल चीज मैंने कल के सबक में आपको लिखाया था, जैम बना लीजिए, कि वो असा नहीं था, नहीं वो अल्लाह का हुक्म था। अल्लाह कुन फयकून का मालिक है, जिस चीज को कुन कह दे वो काम होने लग जाता है। हजर का लफ्ज पीछे गुजर चुके आपके सबक में भी, हजर अस्वद, इन्ना मिन हिजारत, इन आगे आएगा इंशाल्लाह सबक में। तो क्या पता चला, अभी इतनी सी बात पे थोड़ी सी बात करते हैं, कि मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी तलब किया और उससे पहले असबाब इस्तेमाल किए। सबक इसमें बहुत सारे हैं, हालांकि तीन लाइन आते हैं, लेकिन इस सबक में से लेसन क्या मिला? नंबर एक, कि मूसा ने भी अल्लाह से ही मांगा, ये नहीं कह दिया मैं दे सकता हूँ, तो नबी हो के वली हो के पैगंबर हो, वो भी अल्लाह ही से ले सकता है, खुद से कोई नहीं ले सकता। दूसरी बात है असबाब का इस्तेमाल करना, मूसा अलैहिस्सलाम ने सबब इस्तेमाल किया, पत्थर ना मारते और कहते रहते अल्लाह पानी दे अल्लाह पानी दे, नहीं मिलता। देखिए बाज़ लोग कहते हैं अल्लाह जॉब नहीं देता, अब भाई आपने रिजर्वमेंट बनाई, आपने कोई मेहनत की, कोई सीक आउट किया, कोई इधर उधर गए देखा, नहीं देखा तो फिर अल्लाह हाथ पे हाथ रखने वालों को तो कुछ नहीं देता। दूसरी बात आप देखिए कि पहले दौर में भी असा एक बड़ी कीमती चीज थी, आप सूरह ताहा में इसका किरदार पढ़ेंगे, अल्लाह ताला ने खुद पूछा था कि मा तिलका फी यमीनिका या मूसा, ये तेरे दाएं हाथ में क्या है? तो कहा या असाज, ये मेरा असा। पहले दौर में लोग असा लेकर क्यों निकलते थे? एक तो जे कि चलते चलते थक गए तो टेक ले ली, दूसरा रास्ते में वहशी जानवरों के आने का डर होता था, हाथ में डंडा हो तो कहते हैं वैसे ही कुत्ते दूर भागते हैं क्योंकि वो डंडे से डरते हैं। एक तीसरी वजह भी होती थी कि लोग कजाए हाजत के लिए, गंदगी को हटाने के लिए जमीन को असा की नोक से खोदते थे। तीन फायदे लिखे हैं आपने, नंबर एक सहारा, नंबर दो प्रोटेक्शन, मुझी जानवर कोई आ ही जाता है, कोई कीड़ा मकोड़ा कोई सांप बिच्छू तो उसको मारें, और तीसरी चीज के कजाए हाजत के लिए जगह को खोदना, इसके लिए वो असा को यूज करते थे। हुआ क्या? फन फजरत, ये जो इन फजरत है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। फन फजरत, फा अलिफ नून फा जीम रोता, अब सारे लफ्जों का खेल बनाएंगे तो अंदर से तीन लफ्ज मिलेंगे, फजर फजरा। फजर का मानी क्या होता है? फट पड़ना। ये जो सलातुल फजर है ना, ये किस वक्त होती है? जब दिन फूटता है, फूटने का मैंने लिखिए फजरा फूटना। अब यहां अलिफ नून आ गया, इन फिजार, बस मेरा तब दिल कर रहा है कि आपको जल्दी से कोई स्पेशल क्लास दूं और जिसमें जिनको वाकई ग्रामर का शौक है ना उनको साथ ले लूं, और आपको वो बाब सिखा दूं कम अज कम जो हर सबक में आते हैं। जैसे इन फजर है तो मैं बोलते बोलते चुप हो गई कि ये बाब इन फियाल है। अब आप कहेंगे ये कोई नया शहर आ गया, ये कोई खाने का नया नाम आ गया। तो वजन, वजन मीन स्टैंडर्ड। जैसे आप देखिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, किलो का बाट, हाफ किलो का बाट है, पाव का है, ग्राम है, मिलीग्राम है, ये बाट होते हैं ना चीज़ों को तोलने के। अरबी जुबान में हमारी गुफ्तगू को तोलने के बाट होते हैं। आप समझे कि चले अभी 9 याद कर लेना, उसमें से एक होता है इनफियाल। और हर वजन की खूबी है, बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। मैंने देखा है जो लोग भी ग्रामर पढ़ाते हैं बहुत कम यहाँ तक पहुँच पाते हैं। कभी कोई मुझे कहेगा ग्रामर पढ़ाने का तो हो सकता है मैं शुरू ही इससे करूँ, क्योंकि ये रूल समझ आ जाए तो तर्जुमा से समझ आता है। जैसे मैं आपको कहती हूँ तफील, रहीम, अब रहीम और शदीद, क्या आपको दो लफ्ज़ उसमें बताए हुए हैं, शिद्दत और कॉन्टीन्यूटी। तो बाप तफ़ील की खूबी होती है कि इसके अंदर कॉन्टिन्यूटी है, इसके अंदर एस सिमेट्रिकल होता है और शिद्दत भी होती है। ऐसे रहमान, फोलान, गतशान, तूफान, बस ये खेल है। अगर इसके लिए आप संजीदा हैं तो फिर आपको बहुत कुछ मिलेगा, और अगर नहीं है तो इंशाल्लाह कम से कम ये मेरी बातें सुन के संजीदा हो जाएंगे, क्योंकि वाकई ये एक बहुत बड़ा खूबसूरत इल्म है जिसको हमने लेना है। तो अरबी जुबान की खूबी लिखिएगा, फजरा का लफ्ज जहां भी आएगा ना, अब देखिए इसका पहला लफ्ज क्या, फा, जो फेल फा से शुरू होते हैं ना उनमें कुछ बिगाड़ का मानी आता है। मसलन फखर, फखरा क्या होता है, फट पड़ना, यानी फखर करने वाला बंदा क्या होता है, बहुत ही वो डिंगे मार रहा है। फजरा, फसदा, फसका, आप फा से शुरू होने वाले फेल लिखेंगे ना आपको ये बात समझ आएगी। बहरहाल यहां क्या हुआ, फन फजरत, बस फट निकले, मिन हो उससे, किससे। अब यहां देखिए मिन हू की जमीर किधर जा रही है, पीछे वाले सबक में ही होगी, कहीं बाहर नहीं होती। जब लफ्ज जमीर बोलूं तो आयत के पिछले हिस्से में जाए कि यहां फटे उसमें से, तो किस में से, शाबाश, हजर, हजर से निकले, ठीक है। अब फन फजारत में ता क्या है, लफ्ज तो फजर था, फा का मैनी पस हो गया, ये एक अलग लफ्ज है, फा पस फौरन। इन फजारत में ता किस चीज की आ रही है भाई, आगे लफ्ज आ रहा है अशरतन आईना, आगे लफ्ज आ रहा है ना आईन, आईन चश्मे को कहते हैं, ये मोनस होता है, यानी फन। आप खेला करें कुरान खोल के ना ऐसी फारिक बैठ के, और बेस्ट टाइम पता है कि आप खाना खा रहे हैं तो आप अपने सामने सादा कुरान खोल लें, चाय पी रहे हैं, रस डुबो रहे हैं, अब आप फारिक बैठे हैं ना उस वक्त, आप सादे कुरान के टेक्स्ट को अपने सामने स्क्रीन पे या अपने कुरान से खोल के देखें, फन फजरत, लफ्ज़ तो फजर था, समझ आ गया फटना, ये ता कहाँ से आ गई, ता की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। तो फन फजरत का तर्जमा क्या हुआ, अगर आप इसका लफ्जी तर्जमा करें ना, बस फूट निकली, ता मोनस के लिए होता है, तो इसका अंदर क्या फूटी है, जो चीज फूटी है ना वो मोनस होगी, तो फूटी क्या थी, मिन हुस्नता अशराता आईना, ये जो अशरता की ता है ना वो भी यही है, यानी फन फजरत बस फूट निकले मिनहू इस पत्थर में से। इस नता कहते हैं दो को, अशरता कहते हैं 10 को, अशर कहते हैं ना 10 को, अब ये भी असल में अशर 10 ही था, अशराता क्यों आ गया, तो समझ लें कि अरबी जुबान में जैसे मुजक्कर मुअन्नस है ना हमारे पास, तो गिनती भी मुजक्कर और मुअन्नस है, जैसे अहद इहदा, ठीक है, ऐसे आप पढ़ते इसना इसनता इसनतैन, तो इसनता की तालिफ जो है ना असल में लफ्ज क्या होता है, तस्निया का लफ्ज सुना होगा आपने, यानी आप ये सारी बातें लिखे नहीं, लेकिन ये सोचें कि ये एक बात है समझने की कि यहां 12 के लफ्ज को मुअन्नस के लिए जब बोलेंगे तो इसनता शरता बोलेंगे, और अगर मुजक्कर कोई चीज हो, जैसे हम अपनी उर्दू में खेलते हैं कि 12 कुर्सियां, कुर्सी हमारे यहां मुअन्नस होती है ना, और 12 मेज, तो जब 12 कुर्सियां बोलेंगे ना तो इसनता शरता बोलेंगे, और जब हम 12 मेज बोलेंगे तो इसना अशर बोलेंगे। बस अभी भूल जाए, ये लिखने की बातें नहीं है, सिर्फ समझाने की बात कर रही हूँ। फिर अदद मादूद में एक अगर मुजक्कर है तो दूसरा मुअन्नस होता है, एक मुअन्नस है एक मुजक्कर होता है, ये सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह एक वक्त आएगा आपको आएंगी, अपने आप को इस ड्रीम में देखें तो ये बातों से ये देखें कितना संजीदा होने की ज़रूरत है। कुरान खेलते खुलते नहीं आएगा, और आप सिर्फ तफसीर के लफ्ज़ को पढ़ें और सुने और उसके बाद चले जाएं, या आए ही तफसीर के वक्त पे, या कभी तफसीर भी के हमें घर से दे दें, आप अच्छे स्टूडेंट नहीं बनेंगे, आप अपनी इसलाह कर लेंगे इंशाल्लाह, बहुत कुछ होगा। लेकिन अगर आगे आपने टीचर बनना है, आपने दूसरों की हिदायत का जरिया बनना है, तो आपको फिर फोकस्ड होकर सिर्फ आपसे वो टाइम जो आपके लिए रिक्वायर्ड है वो मांगा जाता है। कोई से एक्स्ट्रा टाइम तो कोई मांगता भी नहीं। आप बाद में रुकेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, पहले आ जाएंगे तो हो सकता है डोरी बंद हो। सिर्फ फोकस होकर अगर जो स्टूडेंट लबैक से लेकर आखिर की सुभानक अल्लाह तक क्लास में रहे, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि अल्लाह ताला उसका दिल खोल देता है, दिल भी जम जाता है। और दिल जमता ही उनका जो पूरा टाइम बैठते हैं, जो शुरू में देर से आए बाद में जल्दी चल गए और ऑपोजिट करते रहे, उनका दिल ही नहीं जमता। फिर वो एक दो महीने में वैसे ही छोड़ देते हैं, कभी एक दिन आए, दो दिन नहीं आए, दो दिन आए, छोड़ दिए, वो नहीं रहेंगे। मैं आपको अभी से बताती हूँ, वो कोर्स के एंड तक नहीं चलेंगे। वही चलता है जो कुचलियों के साथ इस दीन को, इल्म को पकड़ लेता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला मुझे सबसे ज्यादा इस कमिटमेंट की तौफीक दे, और आप सबको मेरे से भी बढ़कर दे तौफीक, क्योंकि ये कुरान अल्लाह का कलाम है। अब आप लफ्ज़ देखिए ना, मैं बोला तो मेरा रोंगटे खड़े होने लगे हैं कि ये फन फजरत किसका कलाम है, मिन हुस्न ताशरा तक किसके मुंह से निकला है, बल हुआ कलाम अल्लाह। तो अल्लाह का कलाम हो और हम इतने लहीर मूड में उसको ले लें, हम साथ काम कर रहे हैं और कुरान सुन रहे हैं, हम बातें भी कर रहे हैं, फोन पे मैसेज चेक कर रहे हैं और साथ कुरान सुन रहे हैं, हमारे कान कहीं और है, बातें कहीं और है, कोई चार लफ्ज हमें इसके भी मिल जाए, सॉरी इससे नहीं आएगा आपको कुरान। ये बस एक दिल की तसल्ली है कि आपको मुझे मिल रहा है। मैं पढ़ाते वक्त इस वक्त 10 चीज़ें और करूंगी ना साथ, तो आप पता नहीं मैं क्या क्या बोल दूंगी। यकीन करें मेरा सेलफोन भी बंद होता है, कुछ नहीं मेरे सामने होता, मेरा दिल करता है सिर्फ मुझे इसी एक आयत के अलावा और कोई चीज़ नज़र भी ना आए अपनी टेबल पे, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। तो मूसा अलैहिस्सलाम से पानी तलब किया, मूसा ने अल्लाह से तलब किया, अल्लाह से तलब करने में असबाब इस्तेमाल किए। ये अब एक टोन बनी है ना इस जुमले को, समझे, यही मुस्लिम क्रीड है। आपको मुझे जब कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मैंने आपने भी यही करना है। और क्या निकले उसमें से, ऐनन। अब ऐन के लफ्ज़ को देखिएगा, चश्मे। ऐन किसको कहते हैं वैसे, आँख को, और यहाँ किसको कहते हैं, चश्मे को, स्प्रिंग। अगर आप किसी जगह, अल्लाह आपको ले जाए पहाड़ी मुकाम पर जाए, तो आप किसी चश्मे के बिल्कुल करीब बैठ के देखें, जिस तरह ये हमारी आँख है ना, इसके अंदर भी आप देखिए सुराख होते हैं। आप बैठे हैं आराम से, कुछ भी नहीं, कोई दुख वाली बात सुनी, टप टप आंसू निकलने लगे, प्याज काटा, आंख से टप टप आंसू निकले, तो आईन, ये आईन और ये आईन आंख के साथ है। इसको अगर आप देखें ना, तो चश्मे को, यानी स्प्रिंग, स्प्रिंग वाला चश्मा, एक तो आंखों वाला चश्मा है ना, वो भी कह लें, वो तो वैसे ही एक नकली आंख ही होती है ना, लेकिन आइनन से मुराद क्या है, चश्मा। और आइन कहते हैं वो सोर्स ऑफ वाटर जिसका सुराख नजर ना आए। मुझे आपको नजर तो कुछ नहीं आता आंखों में, कोई अंदर नलकी लगी हुई है, कोई टूटी लगी हुई है, कोई शावर, कोई उसकी मुख्तलिफ तरह की चीजें हैं, तो यहां से भी पता चल रहा है कि पता नहीं कहां से जमीन से पानी निकल आता है। और ये जो हमने ट्रिप किया था अल्हम्दुलिल्लाह समर में, आज तक मेरे दिमाग पे उसका असर है कि ये पानी पत्थरों से इतना निकलता कैसे है। बड़ी बड़ी आबशारे हैं, अगर आप लोग भी गए हैं कभी गैरांगर की तरफ, तो आप देखेंगे कि इतना पानी पत्थरों में कैसे निकल आता है। छोटे छोटे चश्मे तो आपने भी कहीं ना कहीं देखे होंगे पहले से, लेकिन इतने बड़े बड़े चश्मे को, नहरें लगे, वो नहीं देखी। तो आइन कहते हैं उस चश्मे को, सोर्स ऑफ वाटर को, जिसका पानी नजर ना आए। और क्या हुआ, यहां तक बात पूरी हो गई, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया। अच्छा, ये मौजज़ा जो मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से हुआ ना, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ से भी हुआ। कितनों को पता है वाकया, नहीं पता। हुदैबिया का मौका था, मुसलमान उमरा करने की नीयत से मक्का से मदीना गए, मक्का के करीब गए तो मक्का वालों ने किसी गलत फहमी की बुनियाद पर उनको रोक दिया। अब जो रोक दिया तो पानी नहीं था, वहां तो चलते जाते थे, पानी लिमिटेड होता था, वहां वेट करना पड़ा। मुसलमानों ने जाके वहां हमला नहीं किया बल्कि वेट किया, तो नबी सल्लम के सहाबा आए कि अल्लाह के नबी, हमारा पानी खत्म हो गया और मक्का वाले हमें मक्का में आने की इजाजत नहीं दे रहे। तो सहाबा जो थे उन्होंने, आप देखिए कि इतना सब्र का इजहार किया, अल्लाह के नबी सल्लम ने कहा कि तुम में से किसी के पास कोई थोड़ा सा बचा हुआ पानी है, लोग एक प्याले में पानी लेकर आ गए। तो आप देखिए अल्लाह के नबी ने यूं, अब आप ये देखिए एक मोजज़ा है ना, आपने अपना हाथ यूं पानी में डाला और उसके बाद आपकी ये पांच उंगलियों में से पानी निकला था, और सहाबा ने उसको पिया भी, इस्तेमाल किया और ये करके चश्मे निकले। 1500 तकरीबन 1400 लोग थे जिन्होंने वो पानी पिया, इस्तेमाल किया, उसके बाद ख़त्म हो गया। ये हमारा ईमान है कि ये हुआ, ये अल्लाह के नबी के मौजज़े थे। तो ये ऐसे छोटे मोटे मौजज़ात जो होते हैं, ये अल्लाह सुबहान तला दिखाने लगते हैं। और कहते हैं कि जिस पत्थर से ये पानी निकला था ना, आज भी सहराए सीना में मौजूद है। सियाह यानी टूरिस्ट जब जाते हैं तो वो उसको देखते हैं, कहते हैं तकरीबन ज़मीन से 15 फीट ऊंचा, यानी 15 फीट आप देखें तो मेरा ले ये वॉल भी इतनी होगी, कुछ इतना ऊंचा वो पत्थर है। और उसके अंदर बास कहते हैं कि 24 शगाफ थे, बास कहते हैं कि 20 थे, और कुछ कहते हैं कि वक्त के साथ बंद हो गए हैं, लेकिन अभी भी उसमें शिगाफ मौजूद हैं।